पीछे हमने पांच जज्बात की बात की थी कि जो इंसान की जिंदगी में हरकत पैदा करते हैं। जरा दोहरा दें एक एक करके। पहला जज्बा क्या था? भूख। भूख लगती है तो उठता है बंदा, हिम्मत करता है। अपनी भूख या अपने बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं होती तो कई लोग जाके रेड़ी लगा लेते हैं, लेकिन काम तो शुरू कर ही देते हैं। दूसरी चीज प्यास। प्यास भी एक ऐसा जज्बा है कि अगर मुझे अभी प्यास लगी और पानी ना हुआ तो हो सकता है उठ के मैं चल पड़ूं पानी लेने। हैं तीसरी चीज बका, यानी जिंदगी को बाकी रखना सर्वाइवल के लिए। खतरे के वक्त में जान का मसला है कुछ है तो ये भी इंसान को हरकत देता है। नेक्स्ट थिंग इंतकाम, ये भी एक अंदर की आग होती है। और आपने पीछे पढ़ लिया कि खुद तहरीकी है जो ना, ये इमोशनल है, जज्बात है। अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, लोग कत्ल कराते हैं जाके, ये भी तो खुद तहरीकियत होती है। कोई इनको पट्टी थोड़ी पढ़ाता है कत्ल करो, गुस्सा क्या, ये भी तो खुद तहरीकियत ही है ना, अंदर आग लगती है इंतकाम की, गुस्से की। और पांचवी चीज क्या पड़ी थी? मुहब्बत। आज हम बात करेंगे दो और जज्बों से, दो ऐसे जज्बे हैं जो इंसान की जिंदगी में मुखालिफ सिमतों से असरअंदाज होते हैं। यानी अभी तक जो चीजें हमने देखी ये मोस्टली पॉजिटिवली दिख रही हैं, लेकिन ये मुखालिफ तौर से असरअंदाज होते हैं और इनके अंदर भी वैसी ही कुव्वत मिलती है। ये दो जज्बे कौन से हैं? पहला जज्बा है खौफ, फियर, और दूसरा है ख्वाहिश। मैं थोड़ा सा इस पे पहले रुक के कुरान को कोट कर दूं ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये बात समझ आएगी। पहले कुरान फिर एक हदीस सुनाती हूँ आपको इंशाल्लाह। कुरान पाक में क्या आता है? यदून रब्बहुम खौफम व तमाम व मिम रज़क़नाहुम युन्फिकून। किसी को याद है ये कहाँ से पढ़ा मैंने? सूरत सजदा। नबी सल्लम सोते नहीं थे जब तक सूरत सजदा और सूरत मुल्क नहीं पढ़ते थे। तो सूरत सजदा की आयत है कि जो ईमान वाले होते हैं, ततजाफ जुनूब हमनिल मदाजी यदून रब्बहुम खौफम व तमाम, के उनकी करवटें बिस्तरों से अलग होती हैं। सोया हुआ बंदा अपना बिस्तर कब छोड़ता है? जब दो जज्बे आते हैं, यदून रब्बहुम खौफन, खौफ किसका? जहन्नुम का, और तमान, जन्नत का तमा। यानी रात की नींद में जब बंदा बेसुध होता है, बेहिम्मत होता है, उस वक्त भी खौफ या ख्वाहिश बंदे को उठा देती है। तो कहां फिर एक जागता बंदा जागे ना, हैरत की बात है ना। हदीस जो मैंने आपसे कहा था सुनाती हूँ, वो है नबी सल्लम की, उसका खुलासा क्या है कि हैरत उस शख्स पे कि जो जन्नत का तलबगार भी है, ख्वाहिश है ना जन्नत की, फिर भी सो रहा है, और जहन्नुम का खौफ भी रखता है, उसे बचना चाहता है, फिर भी सो रहा है। क्या मतलब? जहन्नुम से निजात सो सो के नहीं मिलती और जन्नत सो के नहीं मिलेगी। ये दो जज्बे इस्लाम ने कैश किए हैं बार बार कुरान में। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुमुल जन्ना या जन्नत अदन, जन्नत अदन। कहीं कहा के नईम मुकीम, कहीं का उकुलहा दायमुन, कहीं का कुलू वशरबू हनी अभी माफ सलफ तुम फिल मिल हालिया। यानी इंसान के अंदर जिन चीज़ों की रगबत है ना, खाने की, पीने की, शादी की, अच्छी कंपनी की, अच्छे घरों की, कुरान ने वो सब इस्तेमाल किए हैं। क्या हो, इनकी ख्वाहिश में जन्नत को पालो और खौफ भी दिलाया जहन्नुम के आंकड़े सलासिला मिन अगलाल, कहीं जहन्नुम के दरख्तों का जिक्र और कहीं वहां की पकड़ का जिक्र है ना। तो याद रखिए दो जज्बे, खौफ और ख्वाहिश, ये बंदे को हरकत में लाते हैं। अगर आज कोई हरकत में नहीं है ना, तो मान लीजिए ना तो जन्नत का शौक है और ना जहन्नुम का खौफ है, वरना ये नहीं हो सकता। और अगर जो पता है ना, हम कहते हैं नियम में पता है, हमें खौफ आता है जहन्नुम से, सिर्फ खबर है। लिखें एक बात, बास लोगों को खबर होती है उसको हकीकत समझ लेते हैं। मसलन बींग अ मुस्लिम, हमें ये खबर है कि जन्नत है और हमें पता है कि जहन्नुम है। हम इस खबर को हकीकत कैसे सोच लेते हैं कि खबर कोई कहते हैं हाँ हमारा ईमान है, ईमान नहीं है ये तो ऐसे ही है जैसे आपको कोई यहां बैठे हुए कह दे कि कनाडा में नियाग्रा फॉल है। बैठ के सोच ले, यकीन कर ले, खबर सबको है। लेकिन अगर आपको वाकई शौक है नियाग्रा फॉल देखने का, वहां जाने का, उसको छूने का, तो आप एफर्ट करेंगे ना। बस हम मुसलमानों का भी अमूमन जो आखिरत के बारे में इल्म है ना, वो खबर की हद तक है। वी नो दिस बट वी डोंट बिलीव, बिकॉज इफ वी बिलीव देन वी शुड डू समथिंग। आपको शौक था, आप गैरांगर गए, कितनी मेहनत की, जो किया, सफर तय किया, पैसा लगाया, वक्त दिया, क्योंकि शौक था। यहां बैठ के तो आपने गैरांगर नहीं देखा। बस यही सोचिए, खौफ जो है ना ये मनफी है। देखिए खौफ नेगेटिव मोटिवेटर है, मनफी तहरीकी कुव्वत है। इसकी वजह से इंसान बहुत कुछ करने पर मजबूर हो जाता है और बहुत सारी चीज़ों से रुका रहता है। खौफ इंसान को रोक देता है, बांध देता है और बिलाखिर मकासिद से दूर कर देता है। बात वाज़ेह, खौफ की वजह से इंसान बड़े बड़े काम करने से रुक जाता है। हर एक का दिल करता होगा कि ऊंचे पहाड़ से ज़रा छलांग तो लगा के देखूं क्या होता है, एडवेंचर, मेरा नाम आ जाएगा बुक में। लेकिन क्यों रुक जाता है? टांग टूट जाएगी, ये खौफ है। रिस्क नहीं ले पाता बंदा, बांध देता खौफ बंदे को। दिल चाहता है मन की माने, लेकिन बांध आवे कि नहीं बदनामी बड़ी होगी, अल्लाह पकड़ लेगा। दुनिया में बहुत भागने को दिल करता है, नाफरमानियां करने को, लेकिन दिल में है कि मालिक की पकड़ बड़ी सख्त है, रुक जाएंगे। बस ये खौफ भी एक किस्म का बंदे के लिए कह लीजिए कि मनफी तहरीक है, आप समझ गए, रोकने वाली। इसी तरह इसके ऑपोजिट है जिद, वो जज्बा जिसे ख्वाहिश कहते हैं। ये मुस्बत जज्बा है, पॉजिटिव है। ये जज्बा इंसान के अंदर उभर कर इसे दूर तक ले जाता है, इसके लिए नए रास्ते खोलता है, इसे अपने मकसद को हासिल करने में मदद देता है। आप कह लीजिए कि खौफ और ख्वाहिश दोनों एक दूसरे की जिद हैं, ऑपोजिट एजीज हैं, ये दोनों दो मुख्तलिफ असरात हैं। अच्छा मजे की बात देखिएगा, कुरान की तफसीर में ये बात बताई थी, यहां भी सुन ले। खौफ का ताल्लुक माजी से होता है, खौफ माजी की तरफ देखता है, ख्वाहिश मुस्तकबिल पर निगाहें रखती है। खौफ जहन में शिकस्तों और दुखों और नाकामियों की तस्वीर उभारता है और डराता है कि ये तजुर्बात जिंदगी में दोबारा पेश आ सकते हैं, जबकि ख्वाहिश जहन में कामयाबियों, उमंगों, कारनामों की यादें जन्म देती है और जहन में हौसला भरती है कि हम अच्छे तजुर्बों के लिए मजीद कोशिश करें। मैं इस पे भी कुरान की आयती लूंगी, अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफन अलैहिम वला हुम यहसनून, सूरह यूनुस की आयत है। इसके समेत कुरान पाक में बारहा ये लफ्ज आता है, ला खौफन अलैहिम वला हुम यहसनून। और जब जन्नतियों के और ईमान वालों के लिए आप ये पढ़ते हैं ना, तो समझ नहीं आता कि ये क्या चीज है। तो आप देखिए कि खौफ का ताल्लुक माजी से कैसे है। बस आप यहां बैठी हैं और आपको एकदम अपने बाप याद आ जाते हैं, फौत हो गए। अब आप उनकी जुदाई सह रही हैं पिछले 5-10 साल से, या जो जिसकी भी है, या जिंदगी में आपको कोई तकलीफ पहुंची, चोट लग गई, हादसा हुआ था। जू ही आपको वो बातें याद आएंगी ना, आपका दिल हुजन से भरेगा, गम। समझ रहे हैं आप? यानी खौफ हुजन जो होता है ना, ये माजी से मुतल्लिक होता है। हमें पिछली बात तो आप बैठे ना, आप कभी क्यों दुखी, आपको कोई पूछे क्यों दुखी है, तो आप ये तो नहीं कहेंगे जो अगले साल मेरा एक्सीडेंट होना है उसके लिए दुखी हो गई हूं, ये आप कहेंगे जो हुआ था उसके लिए दुखी हूं। इसी के बरक्स ख्वाहिश तमन्नाएं मुस्तकबिल के लिए होते हैं। आई वॉन्ट दिस, क्या आप में से कोई मेरे में से ये कहता है आई वॉन्ट दिस कि मैं 1 साल का बन के फिर बच्चों के स्कूल में खेलूं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो हमेशा ख्वाहिशें मुस्तकबिल की होती हैं और खौफ दुख सदमे माजी के होते हैं। अल्लाह सुबहान तआला की पर नजरें रखने वाला जो शख्स होता है ना, ना उसको माजी के तल्ख तजुर्बा तल्ख लगते हैं। वो कहते हैं वो बहुत मजे के थे, वो मीठे थे, है कड़वे थे लेकिन करेले थे। अगर आप अपनी जिंदगी के पिछले कामों पे दुखी हैं तो मान लीजिए ये बात कि आप कभी कामयाब नहीं होंगे। आप उस ड्राइवर को क्या कहेंगे जो ड्राइविंग के दौरान सिर्फ बैक मिरर पे देखे? अब आप जरा थोड़ा सा अपने इमेजिनेशन में खुद को ड्राइविंग सीट पे ले जाएं, चले कि ड्राइविंग सीट पे, फ्रंट मिरर कितना बड़ा होता है, फुल स्क्रीन, और जो बैक मिरर है वो कितना सा है, इतना सा। बात समझ गए? फ्रंट में से आप सामने देख रहे हैं, कोई चीज पीछे देखनी है, गाड़ी आ रही है नहीं आ रही, तो बैक मिरर से देखते हैं। दोनों का साइज क्या है? बैक मिरर छोटा है और फ्रंट बड़ा है, ये सिखाया जा रहा है। जो लोग माजी में झांकते रहेंगे, हाय ये सदमा क्यों हुआ, हाय मेरे माँ बाप ने ये रिश्ता क्यों किया, हाय मेरी इस शख्स से शादी क्यों हुई, हाय मैंने इस औरत को क्यों चूज किया, हाय मैंने उधर जॉब क्यों की, हाय मैं उस मुल्क क्यों गया, हाय मैं उस बस में क्यों बैठा जिसका हादसा होना है, तो फ्रंट से एक्सीडेंट हो जाएगा। देखिए ना, वो ड्राइवर जो सिर्फ छोटे मिरर में ही देख रहा है, आप कहते नहीं छोटा निकाल ही दो, आगे से निकाल ही दें, तो जब जूं ही वो पीछे मुड़ के देखेगा कुछ नहीं आ रहा, तो आगे हादसा होगा ना। तो जिंदगी के सफर में आगे देखिए, यह है खुलासा। जब माजी की महरूमी, उसने मेरे साथ ये किया, उसने तब भी किया, मैं उसका भूल नहीं सकती। बस लोग अपनी जिंदगी की वो जो कहना चाहिए कि किताब है ना, वो शादी के पहले दिन से शुरू करते हैं। उस दिन मेरी सास का पहला जुल्म मेरे ऊपर ये था, आते ही मुझे ये ताना दे दिया, मियाँ ने पहला ये कह दिया, नंद ने पहली ये बात कह दी। पहला दिन 20 साल हो गए, अब छोड़ दीजिए उनकी जान, नहीं, वहां से इनके जुल्मों का सिलसिला शुरू हुआ था, आज तक खत्म नहीं हुआ। तो पीछे देखने वाले हमेशा आगे से चोट खाते हैं। एक लड़की ससुराल में आ गई है मैके से, तो अब वो पिछली यादें ही दिल में समाए रखेगी, तो बताइए क्या वो उस घर में सेट होगी? नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। जिनके हाथों में हर वक्त सेलफोन ही पकड़े हुए हैं कि मेरी माँ इस वक्त क्या कर रही है, मेरी बहन क्या कर रही है, मेरी भाभी इस वक्त क्या कर रही है, भाई क्या कर रहे हैं, आप बताइए उसने अपने चूल्हे पर रखा हुआ दूध भी सही उबालना है कि नहीं उबालना? तो जिंदगी का ये एक तरीका नोट कीजिएगा कि हर चीज को उसकी जगह पे रखें। अच्छा, जब खौफजदा ज़हनियत होती है ना, तो इसका इजहार कुछ जुमलों से होता है। मसलन, आप फील करना चाहते हैं कि क्या आपके अंदर ये मोटिवेटर है खौफ का, तो अमूमन क्या जुमला होता है, लोग पहले से प्रिकॉशंस लेते हैं। अच्छा, अगर ये हो गया तो मैं क्या करूंगी? मसलन हम गाड़ी चला रहे हैं तो इतना खौफ है, हाय अगर अचानक गाड़ी सामने आ गई तो मैं क्या करूंगी? अच्छा, अगर मेरे ब्रेक फेल हो गए तो क्या करूंगी? भाई हैंड ब्रेक लगाना नहीं, अगर हैंड ब्रेक फेल हो गया तो मैं क्या करूंगी? समझ रहे, खौफ वाले जुमले होते हैं, वो फ्यूचर का इंतजार ही बुरे मामले में कर रहे होते हैं। फिर इसी तरह मुझे करना होगा, नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकती, मुझे खतरा महसूस हुआ, अगर यूं होता तो क्या होता, इस तरह के जुमले बहुत बोलते हैं। आप अपनी जुमले में खुद देखें, देखिए कुछ लोगों के तो चेहरों पर लिखा होता है खौफ, उनको देख कर दिल करता रोए, वो दुखी स्टोरी लगते हैं, वो सैड मूवी लगते हैं, इतने दुखी होते लगते हैं इनकी जिंदगी में आज तक खुशी नहीं आई, बात करेंगे ऐसे लगता है अभी रो पड़ेंगे। वजह क्या कि वो अपने आप को माजी से नहीं निकाल सकते, ये अच्छा नहीं होता। जो लोग हर वक्त खौफ वाला होगा ना, उसके साथ पता क्या होता है, आपने उर्दू का एक मुहावरा सुना होगा, डरे को हर एक डराता, सुनी हुई बात? कुछ बच्चे ना छोटी छोटी बात पे स्केर्ड हो जाते हैं तो सारे फिर उनको डराएंगे। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना, वो छोटी छोटी बात पे घबरा जाते हैं, अच्छा फिर क्या हुआ, वो क्या हुआ, ऐसे लोग फिर खौफजदा रहते हैं। जो पुर उम्मीद होता है वो क्या कहता है, मैं चाहता हूँ, हाँ मैं ये कर सकती हूँ, अच्छा मुझे ये मौका बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं इसको अवेल करूंगी। यानी जिंदगी में जब चांसेस आते हैं ना ऐसे, तो जो पुर उम्मीद शख्स है ना, वो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी को ब्लेसिंग बनाता है। वो कहता है तो मुश्किल, लेकिन ये मौका मेरे लिए बड़ा रोशन है, अगर मैंने इसको कर लिया तो करूंगी। जितनी आपकी ख्वाहिश बढ़ती जाएगी ना कुछ करने की, आप देखेंगे कि आप आगे बढ़ने लगेंगे, आगे से आगे आगे। आपकी ख्वाहिश इस बात की तर्जुमान है कि आप इस वक्त कहाँ हैं और कहाँ पहुँचना चाहते हैं। आप लिखिए कि ख्वाहिश में एक मिकनातीस होता है, वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है, ख़ासतौर पर जब लोहा उसमें हो, उसमें एक पॉजिटिव थ्रिल होता है। मनफी हैजान खौफ से जन्म लेता है और दबाव पैदा करता है, यानी जब आप खौफ लाते हैं ना, आप अंडर प्रेशर आ जाते हैं, फिक्र, बीमारी, गुस्सा हदों से ऊपर जाने लगता है। जबकि आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, ख्वाहिशें आती हैं, तो आप सीधा भागते हैं, फिर आप कहते हैं मैं ये कर लूंगी, कोई मुश्किल नहीं है, ये होगा। और आप देखेंगे कि अगर आप ये चाहते हैं ना कि आपकी जिंदगी में कोई चैलेंज ही ना हो, बहुत सारे चाहते हैं, माएँ चाहती हैं मेरा बच्चा कभी ना गिरे, ये कभी नहीं होगा, बच्चे गिर के बड़े होते हैं। हर माँ चाहती है कि मेरे बच्चे को कभी भी चोट ना लगे, कोई बुरा तजुर्बा ना हो, लेकिन आप देखते हैं कि होते हैं, हम में से हर एक को अपना बचपन का कोई ना कोई हादसा याद होगा, कोई ना कोई जख्म आया होगा, ये होगा। क्यों होता है? ताकि आपको गर्म रखा जाए। अगर हमारी जिंदगी में बिल्कुल ऐसे ही आ जाए ना, मेरे जहन में इस वक्त वो ECG करवाते हुए लोगों की जो लाइन आती है ना, वो आ रही है, अब देखिए वो यूं है हार्ट बीट, और कभी वो दिखाते हैं यूं सीधी हो गई, दैट मीन ही इज एक्सपायर्ड। ये हैजान और जो जज्बात है ना, जो हमें बाज दफा बुरे लगते हैं, आप चाहते हैं कि आप इससे पाक हो जाएं, तो इसके दो तरीके हैं, बेहोशी या मौत। बेहोश शख्स को कोई हैजान नहीं, उसको कुछ नहीं, वो आराम से बैठा सो रहा है। एक इंसान को जिंदगी में जरूरत होती है हादसों की, चैलेंजेस की जरूरत होती है, जो उसको फिर जिद्दोजहद पर उकसाती है, उसको अपने मकासद को हासिल करने में ले जाती है। और याद रखिए, जो कामयाब लोग होते हैं ना, वो जिंदगी में पेश आने वाले दबाव का सामना मुस्बत अंदाज में करते हैं। चले खिलाड़ी की मिसाल लेते हैं, सब कोई शौक होता है खेल देखने का या खेलने का। अमूमन प्लेयर्स खेल के मैदान में बड़े रिलैक्स खड़े होते हैं, एक एक मिनट का रिस्क होता है उनके लिए, तो वो जान की खेल है ना कि उनको जीतना है। बॉल आ रही है तो बॉल उनकी तरफ आ रही है कि नहीं, अगर विकेट पे गिर गई तो क्या होगा, बल्ला ठीक जगह लगा कि नहीं लगा। जैसे खिलाड़ी खेल के मैदान में हर लम्हे चैलेंज का इंतजार कर रहा होता है ना, और चेक करता है मैंने इस गेंद को कैसे खेलना है, मैंने छक्का लगाना है, इसी तरह से कामयाब लोग हर वक्त अपनी जिंदगी में चैलेंजेस के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। हम वक्त अपने मकासद को पाने के रास्ते के लिए कोशिशें कर रहे होते हैं। वो कहते नहीं, हमने कुछ करना है, हमने करना है। ख्वाब तो हमने बड़े देखे हुए हैं, हम मुसलमान होने के नाते देखे, हमारा ख्वाब है इस्लाम आम हो जाए, बच्चों के स्कूल बन जाएं, मुस्लिम इदारे बन जाएं, सारे नमाजी बन जाएं, सब सुन्नत पे चलें। ख्वाब तो सब देखते हैं, करते कितने? उसके करने के रास्ते में जो रुकावटें हैं वो आप देख लीजिए, तो हमारी डिस्ट्रेक्शंस हैं। तो जो कुछ करना चाहते हैं वो अपनी जिंदगी में हमेशा चैलेंजेस करेंगे। बस एक शख्स, वो कहते हैं मुझे फौज में जाने का बहुत शौक है, पर मैं किसी दुश्मन का सामना नहीं कर सकता, और मुझे कभी इमरजेंसी हालात में ना बुलाना। तो उसको को कि फौज तो निकलती है इमरजेंसी हालात में, आमतौर पे फौजें कभी लड़ती हैं? आपको तो सारा साल हुकूमतें फौज को खिलाती पिलाती हैं, ट्रेनिंग्स रखती हैं, ताकि किसी वक्त दुश्मन आ गया तो वो भाग जाए। तो जिस वक्त दुश्मन आए उस वक्त वो ना आगे आए, तो सारा साल वो क्या उसके ऊपर मेहनत करेंगे? नहीं करेंगे। तो आप अगर नोट कर रहे हैं ना, तो सारी बात का खुलासा क्या है कि जो कामयाब लोग होते हैं ना, वो जिंदगी के चैलेंजेस से घबराते नहीं हैं, उनका हल ढूंढते हैं। वो देखते हैं कि जो मेरी जिंदगी के इस वक्त के हालात है, मैं उसको कैसे टैकल करूं। मैं रात को किसी से ऐसी बात कर रही थी, मेरी दो मीटिंग्स थी और दोनों इतनी एडवर्स थी, आप कह लीजिए कि मेरे पास साथी थी, तो मैं उनको बता रही थी कि अभी मैं आपके साथ इतनी रिलैक्स होकर चाय पी रही हूँ, लेकिन अभी 15 मिनट बाद जो मीटिंग है वो एक इतना एडवर्स किसी का मसला है कि खड़े खड़े उनके जो वहाँ की मैनेजमेंट में टीचर थी या प्रिंसिपल थी वो वॉकआउट कर गई, और अब वो बहुत गड़बड़ वाला मामला बना हुआ, यानी बिल्कुल अप्स एंड डाउन वाली कैफियत है। तो उनके साथ अभी एक मीटिंग है, फिर उसके बाद अगली मीटिंग एक ऐसे घर में है कि जो बिल्कुल टूटने के करीब है, घर डाइवोर्स के आखिरी किनारे में, इनके साथ भी मैंने बात करनी है उनसे भी। तो कहती आप इतनी रिलैक्स बैठी हुई हैं, आपको असर नहीं होता? मैंने कहा देखिए, अगर मुझे हर बात का असर मेरे अपने ऊपर मैं लेने लगी, तो मैं तो सारा दिन खपती रहूं, मैं तो ना अपने मियाँ से अच्छी बात कर सकूं, ना घर से, ना कुछ, मैं तो जलती कुटती रहूं। हर चीज को जो बात कहने लगी है ना, हालात को और मौके को और मसलों को और गमों को अपने ऊपर ना तारी करें, उसका हल ढूंढें। जब हमारा दिमाग ही गर्म हो गया, हम गुस्से से फट 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 फट, हमारी नस फटकने लगी, ब्लड प्रेशर तेज हो गया और घबरा, तो आप अगले को मशवरा क्या देंगे? और जब मेरी उनसे बात भी हुई ना, मुझे पता था वेरी क्रिटिकल इश्यू, और वो सोच रहे होंगे पता नहीं क्या हो गया। तो मैंने उन्हें कहा रिलैक्स, काम क्वाइट, नो प्रॉब्लम, अल्लाह काफ़ी है, इतना बड़ा इशू नहीं है, लोगों से कुछ नहीं होता, लोग भी आते हैं जाते भी हैं, मौत को मर भी तो सकता है ना, तो फिर क्या आप किसी को रोकेंगे? आप सोचेंगे इन हालात में करना क्या? तो लिखिए ये बात, कामयाब लोग पुरखतर काम को मौका समझते हैं। ये जुमला जरा लिख लें और इसको अपने दिल पे लिख लें, खतरों से भरे हुए काम लोगों को क्या करते हैं? हाय मर गए, बड़े खतरे हैं। जबकि जो अकलमंद लोग हैं ना, कहते हैं ये तो मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं। बात समझ रहे हैं? आप देखिए ना कि जमीन के अंदर कहीं फीलिंग आती है कि यहाँ ऑयल है, ये गोल्ड है, तो उस गोल्ड को लेने के लिए क्या करेंगे लोग? डिगिंग करेंगे ना, हथौड़े बरसाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे, क्योंकि उनको पता है इसके नीचे तेल है या इसके नीचे सोना है। तो पुरखतर काम को वो मौके समझ रहे हैं, किस चीज के? कि ये थोड़े हथौड़े चले चूल्हे इधर उधर निकले, फिर गोल्ड निकल आएगा। घबराते नहीं है, एम्बिशियस होते हैं, चैलेंजेस को कबूल करते हैं, और कामयाबी के इनाम को कबल अज वक्त देखते हैं। ये भी लिखे, कामयाबी का इनाम दूसरों को तब नजर आता है जब मिल जाता है। कामयाब बंदे की नजर इतनी तेज होती है, वक्त से पहले ही खुश हो रहा होता है, देखना यह थोड़े जो मेरे ऊपर बरस रहे ना, इसके बाद मेरे अंदर से तेल निकलना है। जैसे आपने वो देखे ना हुदहुद जानवर के बारे में सुना होगा, इसको जमीन के अंदर का पानी नजर आता है। लोग जब सहराओं में सफर करते हैं ना, तो इस किस्म के जानवरों को साथ रखते हैं, परिंदों को, जानवरों को। तो ये परिंदा उड़ता है जब जाता है, तो इसको नीचे पानी खुद ही दिख रहा होता है। जिधर जिधर ये परिंदे उड़ते हैं ना, जो लोग भी जाते हैं, जहां वो बैठ जाए ना, तो लोग वहां से जमीन खोदते हैं तो पानी निकल आता है। उकाब जो है उसकी भी कुछ इस किस्म की खूबी है, उस पर एक अलग मैंने लेक्चर दिया था एक मौके पर। کہ شاہین اس کی زندگی کا کیا حالات ہوتے ہیں. تو یہ اللہ نے کائنات میں میرے آپ کے لیے سبق رکھے, لیکن ہم نے کیا پڑھنا چھوڑے, ہمارے پاس کتابیں اتنی ہیں وہی نہیں پڑھی جا رہی. تو ہمیشہ یاد رکھے, کامیابی کا انعام وقت سے پہلے آپ کو دکھے اور ناکامی کی صورت میں ملنے والی سزا پر توجہ نہیں دیتے. ناکام ہو گئے نا, مثال ہے کوشش کی تیل نکالنے کی, پتہ چلا نہیں تھا تیل, تو کہتے کوئی بات نہیں ایکسرسائز ہی ہو گئی, ذرا زمین اوپر نیچے ہوگی, نہیں بھی ملا کوئی بات نہیں, ہم ڈپریس نہیں ہوں گے. یعنی سراسر پازیٹیو ایٹیچیوڈ کا نام ہے یہ سب کچھ. ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان اپنے آپ کو حرکت میں لائے. حرکت میں برکت. زندگی کھونے کے لیے نہیں ہے. میرے آپ کے پاس بہت تھوڑا وقت ہے, جو کرنا ہے آج کرنا ہے. جس دن ہم زمین کی چھاتی سے زمین کے پیٹ میں چلے جائیں گے نا, پھر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. بلائیے جا کے ذرا یہ سامنے جو قبرستان ہے اس کے کسی ایک مردے کو, آؤ کچھ کرو, نہیں کر سکتے. آپ نے بھی خود سے کام لینا ہے تو ابھی لینا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے, ہر آنے والا دن بندے کو کمزور کرتا ہے. ہر آنے والا دن ایموشنلی انسان ویک ہوتا ہے, سائیکلوجیکلی تنہا رہ جاتا ہے. ایون بچے ہیں, شوہر ہے, بچے بڑے ہو کے بزی ہو گئے. وہ بچہ جو سارا دن ماما ماما کرتا پیچھے پھرتا تھا, آپ دیکھیں بچے اسکول گوئیں گی کیوں نہ ہو جائے, ماؤں سے پرواہ نہیں کرتے. مائیں پیچھے پھرتی ہیں تو آتے نہیں, تو مائیں بعض وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں کہ یہ مجھے چھوڑ دے گا. ایک عورت ہی تو اس کو ویسی کوئی پرابلم تھی سائیکلوجیکلی, تو وہ سائیکٹرسٹ کے پاس گئی, تو سائیکٹرسٹ اپنی کہانی سنتی ہے نا کہ آپ کے ساتھ کیا ہے. تو اس نے اس میں بتا دیا کہ میرے بیٹے کی منگنی ہو رہی ہے اور نکاح ہونا ہے, شادی ہے. تو سائیکٹرسٹ کہتی ہے اچھا اوکے, دین یو فیل کہ اب تمہارا بیٹا چلا جائے گا, پھر وہ تمہاری توجہ نہیں دے گا, وہ کسی اور عورت میں انوالو ہو جائے گا, تو یہ چیز تمہیں ڈپریس کر رہی ہے. تو اس نے اس کو یہ فیل کرایا کہ اس عمر میں جب عورتوں کے بچوں کی شادیاں شروع ہو جاتی ہیں تو وہ تنہا خود کو فیل کرتی ہیں. بالکل اسی طرح یاد رکھے کہ جسمانی صحت بھی وقت کے ساتھ کم ہوتی ہے. جو کرنا ہے نا آپ نے یہ اب کرنا ہے, ارلی ایج میں, ٹین ایجر. سیرت پڑھ کے دیکھ لیں, جو لوگوں نے اسلام شروع میں قبول کیا اللہ کے نبی کے ہاتھ میں, وہ ٹین ایجر تھے, ینگس. اور مجھے سب سے زیادہ جو اسٹرانگ مدر لگتے ہیں نا, جو لوگ ہوتے ہیں کچھ کرنے والے, وہ ینگ مدرز ہوتی ہیں, چھوٹے بچوں کی مائیں. بچوں کے ساتھ دیکھیے عورت میں کتنی انرجی آ جاتی ہے نا, شادی سے پہلے ہو سکتا ہے پانی بھی نوٹ کے پیتی ہو بچی, لیکن جب بچے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کا منہ دھو رہی ہے, دوسرے کے منہ میں لکمے ڈال رہی ہے, تیسرے کے کپڑے بدل رہی ہے, چوتھے کو پکڑ رہی, کیسے وہ مشینی انداز ہوتا ہے. ہمارے یہاں کہتے نہیں بچوں کی مائیں کچھ نہیں کر سکتی. میں اپنے تجربے سے بتاتی ہوں, بچوں کی مائیں ہی سب کچھ کرتی ہیں. جن کے نہیں, یعنی ینگ لڑکیاں ماشاء اللہ ہیں, آپ لوگوں کو تو نہیں میں کہتی, لیکن میں نے ینگ بچی ہے دیکھی, ان کی زندگی کا مقصد صرف سونا ہے. یا وہ کلاس میں آتی ہیں اور آدھا آ کے کلاس میں بھی سوئی ہوتی ہیں, یا گھر جا کے, میں کچھ بچیوں کا سوچتی ہوں تو میزے میں آتا سو رہی, خراٹے لیتی رہتی ہیں. ان کی مائیں کہتی ہیں 4-4 بجے سو کے اٹھتی ہیں, تو 4 بجے جب ہم ڈنر کی تیاریاں کر رہے ہیں ان کا لنچ انڈا ٹوسٹ چل رہا ہوتا ہے, سوتی ہیں, سوتا سویا وہ محل, جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے. اور جو بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں بےچارے, وہ گھٹنوں کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں. اصل ہے زندگی جو اب آپ کے 1-2 چھوٹے 3 بچے ہیں, بھاگیں دوڑے, اپنے لیے بھی کر لیں, کمیونٹی کے لیے بھی کر لیں, دوستوں کے لیے کر لیں. آپ دیکھیے ایک عورت اوسط درجے کی جو ہمارے گھروں کی ہے, ساس سسر کو بھی دیکھ لیتی ہے گھر میں, اپنے شوہر کو بھی خوش رکھتی ہیں, بچوں کو بھی دیکھتی ہیں, گھر بھی صاف کرتی ہیں, یہی کرتی ہیں نا. یہ کون سی عمر کی عورتیں ہوتی ہیں جو درمیانی درجے کی عورتیں ہوتی ہیں. پھر ایک اور چیز چھوٹی سی دیکھیے بات, کہ ہر انسان کے دل میں نا شک آتا ہے, شکوک و شبہات ہوتے ہیں, ہائے اگر یہ نہ ہوا. یعنی کوئی بھی کام کر رہے ہیں آپ, کچھ کھا رہے ہیں تو پتہ نہیں میں بیمار نہ ہو جاؤں, اچھا مجھے یہ چیز تکلیف نہ دے. تو خوف جو ہے نا, بعض دفعہ بندے کے دل میں شک ڈال دیتا ہے. اور جب بندے کے دل میں شک آتا ہے نا, تو وہ کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتا. یعنی خود تحریکیت کا دشمن شک بھی ہے. مثلا آپ کسی کی مدد کر رہے تھے, بڑے جوش جذبے سے آپ کہتے اللہ تیرا شکر ہے, بڑا اچھا جگہ مل گئی, اب میں اپنی ساری انرجی ادھر لگاؤں گی. شک کا ہی کیڑا ڈل گیا آپ کو, یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں, ان کا کوئی تعلق ہے کسی سے, یا دنیاوی مطلب ہے, یا اصل میں تو یہ کاروبار تھا, نام انہوں نے دین کا رکھا, کوئی شک. آپ دیکھیں گے اگلے دن آپ کے لیے آنا ہی محال ہو جائے گا. کسی چیز پہ بھی شک ہو, یہ پانی پیاس لگی ہوئی نا پی لوں گی بغیر سوچے, اور گلا خراب ہے, کھانسی ہے, اور مجھے شک پڑ جائے کہ اس میں کوئی مکھی گری تھی اور انہوں نے نکال دی تھی, یا اس پانی میں پتہ نہیں کیا ڈالا تھا اور نکال دیا تھا, میں شاید پیاس کی وجہ سے مر جاؤں لیکن میں اس کو نہیں پیوں گی. شک پہلا حکم ہی سورۃ بقرہ کا کیا ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, شک کے بغیر کرو گے. تو جب زندگی میں شک آتا ہے نا, تو پھر کرنا کیا ہے, अब आप इसको भी थोड़ा सा देखिए, जो लोग शकूक और खदशात को फतह कर लेते हैं वो दरअसल नाकामियों को फतह कर लेते हैं। शैतान ने आदम और हवा को जो बहकाया था ना, शक डाला था। सूरत अल-अराफ़ में जाकर आप पढ़ लें, कहने का तुम्हें पता है कि अल्लाह ने तुम्हें क्यों रोका इस दरख्त के फल से? शक डाल दिया ना अल्लाह पे, अल्लाह के बारे में बदगुमान कर दिया। नासे का लफ्ज़ है कि मैं तो तुम दोनों के लिए बड़ा खैर ख्वाह हूँ, असल में अल्लाह को नाउज़ बिला डर है कि तुम ये फल खा के हमेशा ना जिंदा रहो और उसके मुकाबले पे ना जाओ और तुम जवान रहोगे। शक से आदम अलैहिस्सलाम को वो फल चखवा दिया। तो शक को ज़िंदगी में ना आने दे, जो काम करना है उसको शक से पाक होकर करना है, हिम्मत से हर मुश्किल को दूर करना है। खौफ और खदशे को दूर करने के लिए ख्वाहिश सबसे अहम हथियार है। अब देखिए, ख्वाहिश इंसान के अंदर अमल का शोला उभारती है ना, जहन को मसरूफ रखते हैं, मकसद की लगन को जिंदा रखते हैं। जब एक इंसान गैर फाल होता है ना, तो फिर इसके अंदर खदशे आते हैं। और ये चीज़ मैं आपको अपने अपने आसान से लफ्ज़ों में बता दूँ, बेकार रहना, फारिग वक्त का बहुत होना। अक्सर माओं को भी मैं कहती हूँ अपनी बच्चियों को फारिग ना रखा करें, अकेले ना रखा करें। यंग लड़के हैं तो उनको माँ बापों को चाहिए कि अपने साथ ले जाएं, कारोबार में डाल लें, जॉब पे डाल दें, कुछ भी कर दें। क्यों? वो इंग्लिश का एक जुमला है ना कि एम्प्टी माइंड इज डेवल्स वर्कशॉप, खाली जहन शैतान की वर्कशॉप होती है। शैतान खाली जहन बंदे के अंदर शक भी डालता है, खदशे भी डालता है, खौफ भी डालता है, ये होगा, और उल्टे सीधे बातें डालेगा। और आपने क्यों मना किया कि अकेला एक बंदा सफ़र ना करे, दो लोग भी रात को इकट्ठे सफ़र ना करें? शैतान एक आए, उसके साथ आएगा, पता नहीं उससे क्या ले लेगा काम। दो आएंगे, हो सकता है उनको किस गंदगी में मुलव्वस कर दे। कम से कम तीन लोग रातों को अगर तनखा जाए ना, कि सफ़र वहाँ दौर में जंगलों के सफ़र होते थे, सहरा थे, चोरों डाकों का डर था, तो आपने फरमाया कम अज़ कम तीन लोग सफ़र किया करें। क्योंकि एक और दो लोग जब होते हैं ना, तो वो शैतान के हाथों में आते हैं। फिर इसी तरह से आप एक और चीज़, अब हम इस समय मौजू को समेटते हैं, एंड की तरफ चलते हैं, कि आप चाहते हैं ज़िंदगी में बड़ा काम करना। अब बड़े काम करने से कुछ मादी फ़ायदे भी होते हैं ना, मसलन आप काम तो कोई अल्लाह का लिए कर रहे हैं, लेकिन आपको उसमें ज़ाती तौर पे भी कोई फ़ायदा हो जाता है। मसलन आप देखिए कि आप इस वक्त हम कुरान सुन रहे हैं ना, बैठे पढ़ रहे हैं, हम सब क्यों बैठे हैं कि हमारी तरबियत हो जाए, लेकिन आपकी टांगों को सुकून मिल रहा है ना बैठे में, कमर दुखी भी थी, थक गया। आप काम कर रहे होते तो आप चलते फिरते, लेकिन यहाँ कुर्सी पे बैठे आप लेक्चर सुन रहे हैं। आप कहते हैं मैं लेट के सुन लेती हूँ, आप घर में लेटे हैं, आप सुन तो आप लेक्चर रहे थे अपनी तरबियत के लिए, लेकिन आपके जिस्म को सुकून मिला कि नहीं मिला? समझ आइए। तो जब कोई काम आप आखरत के लिए या कह लीजिए कि बड़ी कामयाबी के लिए करें ना, तो उससे जो छोटे छोटे मादी फायदे होते हैं ना, उसको भी इग्नोर ना करें। मसलन अगर आपको क्लास में आना मुश्किल लगता है, या आपको मस्जिद में मर्द है तो उसको मस्जिद में जमात से जाना मुश्किल लगता है, पढ़ने नमाज पढ़ना मुश्किल लगता है, क्योंकि इस समय काम औरतों के पढ़ना पढ़ाना है, मर्दों की नमाजें और जिहाद वगैरह। हमारा ये छोटा सा काम है ना कि हमने सीखना है, सिखाना है, दूसरों को फ़ायदे देने हैं, ये करना है, वो करना है। तो आप देखिए कि आप एक बड़े काम के लिए यहाँ आई, क्या यहाँ आने से पहले आपने कपड़े बदले, कंघी की, शावर लिया, तैयार हुई, आप थोड़ी सी फ्रेश हो गई ना? ये आप घर में होती तो आप ना करती, अमूमन हमारे कल्चर में ऐसे ही होता है ना। तो आप ये सोचें कि मेरे लिए यहाँ आने का एक ये भी फायदा हो गया कि मैं फ्रेश अप हो गई। और जब बंदा जिस्मानी तौर पे पाक साफ सुथरा हो जाता है ना, तो वैसे ही उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो जब हम बड़े कामों के अंदर छोटे छोटे जो हमें ज़ाती फायदे मिलते हैं ना, उसको कंसिडर करते हैं ना, तो फिर हमारे अंदर और काम करने का दिल करता है। कितनों को मेरी बात समझ आई है? अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको नहीं आई वो मेरे लिए वह बात ही नहीं है। लेकिन याद रखिए, कुछ करेंगे तो फ़ायदा ज़रूर होगा। कामयाबी हुनर है। आप कह लीजिए कि अल्लाह सुभान व तआला ने डिफरेंट स्किल्स दी होती है ना। हम कहते हैं डॉक्टर बन जाओ तो कामयाब हो, पायलट बन गए तो बस पायलट से शादी होगी, देखना घर में दौलत बरसेगी, डॉलर्स गिरेंगे घर में, पाउंड्स के कॉइन्स आएंगे। नहीं, हर डॉक्टर, हर पायलट, हर इंजीनियर कामयाब नहीं होता। तो कामयाबी हुनरमंद और जौहर भरे आदमी की मीरास नहीं है। हर डॉक्टर कामयाब नहीं है। इसी तरह आप देखिए, बाज़ अनपढ़ बेचारे लाखों रुपया घर लेके जाते हैं, रात को अंगूठा लगाते हैं, साइन नहीं करने आते, सेठ बने हुए बड़े बड़े। तो आपकी हुनरमंदी या आपके अंदर क्या स्किल्स थी, इसकी वजह से शर्त नहीं है कि आप कामयाब होंगे, और ना कामयाब होने के लिए जहानत ही दरकार है। ये भी बड़ी मज़े की बात है। बस लोग कहते हैं जो बहुत जहीन होते हैं ना वो कामयाब हो जाते हैं। आप पढ़ के तो देखिए, सड़कों पर रुलते देखे जहीन लोग, बाज़ लोग पागल हो जाते हैं ज़्यादा अक्लमंद होने की वजह से भी। और ना ही ये इनकी है जिनके पास वसाइल हैं। लोग कहते हैं वसाइल होना फिर आप बहुत कामयाब हैं, और ना ही इसके लिए बहुत लायक होने की ज़रूरत है। एक सिस्टर थी, बड़ी इंटरेस्टेड थी, आती थी, सीखती थी, बड़ी खुश होती थी। तो धान के पान एंड पे उनकी बातों का खुलासा कहता था, ये सब कौन कर रहा है, आप लोगों को स्पॉन्सर कौन करता है? अच्छा, मेरे पास ख्वाब बड़े हैं पर मेरे मियाँ पास पैसे नहीं हैं। अच्छा, किसी जगह कोई स्कूल, इधर से कोई नॉर्वे में ऐसा इदारा है जो स्पॉन्सर करता है कुछ काम करने के, तो मैं उनके पास उनकी हस्ती थी। लोग ये सोचते हैं ये सब कुछ वसाइल हो तो फिर होता है, हालांकि बात इससे ऑपोजिट है। आप काम कर लें, वसाइल खुद ब खुद बनेंगे। नबी के पास कौन से वसाइल थे सिवाय ओहद की भगदड़ के? पूरी जंगें आपने जीती हैं, और हर जंग में आपके पास वसाइल नॉन मुस्लिम्स के मुकाबले में सिफर थे। तो वसाइल चार चीज़ें हैं, हुनरमंदी, हाउ एक्सपर्ट यू आर, स्किल यानी आप में कितने जौहर भरे हुए, फिर आप जहीन कितने, इंटेलिजेंट कितने, और आपके वसाइल यानी रिसोर्सेज कितने हैं। इसमें से किसी चीज़ का कामयाबी से ताल्लुक नहीं है। अब मैं जो जुमला बोलूँगी ना, इसको सुन के बहुत सारों के अंदर एक हरकत आनी चाहिए। आप कहेंगे लो हम तो सोच रहे थे अल्लाह ने हमें कोई अकल ही नहीं दी। बात लोग कहते हैं हमें अल्लाह ने कोई इतनी स्किल ही कोई नहीं दी जी, वो तो ना हमें उर्दू बोलनी आती है, ना इंग्लिश बोलनी आती है, ना हमारा पेन ना उड़ना अच्छा है, ना हमारे पास कोई अकल, हम सीधे साधे गाँव के लोग हैं। तो वो सोचते हैं कि अकलमंदी नहीं। कामयाबी इन 6-7 चीज़ों पर नहीं जिनके मैंने नाम लिए, कामयाबी का सारा दारोमदार इस पर है कि आप कितने मुतहरिक हैं, हाउ फाल यू आर, हाउ एक्टिव यू आर, और कितने साबित कदम हैं। और तीसरी चीज, अपने मकसद की सिमत मर किस दर्जे से फोकस की हूँ मैं, कैसे। मसलन आप देखिए, आप हरकत करना चाहते हैं, जैसे अक्सर औरतें अपने हस्बैंड्स की बात करती, कहते मेरे हस्बैंड एक्टिव बहुत हैं, चीज़ ख़राब होती है घर में खुद ही ठीक कर लेते हैं, वहाँ जाके लोग तो प्लम्बर्स को ढूंढ रहे होते हैं, वो खुद ही जाके सारा कुछ सही कर देते हैं। अब वो खुद ही सीखते हैं। मैं ऐसे कई ब्रदर्स को जानती हूँ जो हमारे क्लोज सर्कट में, कहती उन्होंने कुछ नहीं सीखा, वो कैसे देखते जाके हुआ हुआ क्या है, अपनी अकल इस्तेमाल करते हैं, उसी के मुताबिक करना शुरू कर देते हैं। कहीं करना कैसे होता है, हाँ समझ गया ना। आप करना शुरू कर दें, आप अपने बच्चों को देखा करें, आप नया खिलौना ला के अपने बच्चे को देती हैं, बड़ी खुशी से आपने साइकिल ला कर दी, आप 2 घंटे बाद जाके देखते हैं तो वो अल्लाह का बंदा उसके अंदर थोड़ी से कोई ठोका ठाकी कर रहा है, आप सर पीट लेती हैं, आप कहते हैं ये क्या कर रहा है, आप कहते वो क्या कर रहा है, उसके अंदर एक जज्बा है, क्यूरियसिटी है कि ये बनी कैसे है, मैं इसको तोड़ूं फिर मैं देखूं, फिर मैं इसको खुद जोड़ूंगा। अल्लाह ने इंसान को ये दे के भेजा है, तो जो लोग अपनी काम पे फोकस है, मैं खुद ही रास्ता ढूंढ लूंगा। जैसे घर में आप देखिए ना, कुछ खवातीन है जरा सा कोई काम हुआ फौरन फोन कर दिया नई चीज ले आओ, कुछ अकलमंद होती हो कहते ये टूटी हुई का जोड़ कैसे लेना, सुघड़ापा जिसको कहते हैं। फिर इसी तरह आप देखिए साबित कदमी, ये बड़ी ज़रूरी है। हम शुरू बड़े शौक से करते हैं काम, हमारे यहाँ प्रोजेक्ट्स ऐसे वो रेड फीता काट के और मुबारकबादियों में, और टीवी पे आज वजीर आजम ने संगे बुनियाद रखा, ईंट लगाई, और आज फलां प्रोजेक्ट था उसको हमने सुरख फीता काट के, उसके बाद क्या हुआ, 10 साल हो गए वो जी, पहले हुकूमत बदल गई, फिर उसने शुरू किया था, दूसरी आई उसने उसको तोड़ दिया, तीसरी आई उसने पाइपें डालने के लिए सड़कें फिर तोड़ दी, कुछ नहीं बनता। बी फोकस्ड एंड बी फर्म, साबित कदमी और अपने मकसद की सिमत तवज्जो। एक जुमला पढ़ा था कहीं, बहुत ही अच्छा लगा, स्पीड इज नॉट इम्पॉर्टेंट, डायरेक्शन इज। आप यहां से ध्रमन से आई हैं ना, आप किस स्पीड से आई, 70, 80, 90, 60, 40, 50, इट्स ओके, स्पीड का फर्क तो पड़ता है, इतना नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपकी डायरेक्शन ही गलत होती, आप फिरसत की साइड पे आने की बजाय आप मोस्की सड़क ले चुकी होती तो आप इधर कभी ना पहुंचती, चाहे आप 90 की स्पीड से चलते। बहुत सारे लोग हरकत तो करते हैं, स्पीड भी उनकी बड़ी तेज है, लेकिन उनकी डायरेक्शन गलत होती है। तो डायरेक्शन सीधी करने का रास्ता ये कुरान और सुन्नत है। मैं कहती हूं अगर हम मुसलमान इस बात को समझ जाए ना कि हमारे पास क्या है कि जिसमें दुनिया की कामयाबियों से गुजर के आखिरत की कामयाबी मिलनी है, तो दुनिया भी हमारी थी, आखिरत भी हमारी होगी इंशाल्लाह। लेकिन हम उलट तरफ चल पड़ते हैं। फिर फिर जब ख्वाहिशें उभरती हैं ना तो तवानाई मिलती है, ये भी एक एंगल समझिएगा। कुछ लोग कहते हैं कोशिश की थी फिर काम नहीं हुआ, फिर एक बार किया बच्चे नहीं आए। जैसे एक टीचर की बात है, एक कोऑर्डिनेटर थी, तो बड़े जोश से एक कोर्स, समर कोर्स अनाउंस किया, तो पहला दिन था, बड़े जोश से काम कर रही थी, तो कुछ ऐसा था कोई वजह हुई होगी, अल्लाह नोस बस, लेकिन जिस दिन कोर्स की ओपनिंग थी उस दिन बहुत थोड़े बच्चे आए। तो बाद में मैंने उनसे पूछा, सुनाए, कहती मेरा तो सारे जज्बा ख़त्म हो गए, मैं तो वो हो क्यों, बच्चे क्यों नहीं आए। तो मैंने कहा फिर आपका मोटिव गलत था, अगर बच्चे ज़्यादा आ जाते तो आपने जो एक्टिविटीज़ जो प्लानिंग सोची थी आप बड़े जोश से करती, और बच्चे थोड़े आए हैं तो आप कहती हैं कि मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं करूँगी, अच्छा फिर ये मैं किसी और को प्रोजेक्ट दे दूँ, तो दैट मीन यू आर नॉट सीरियस। आपका गोल क्या होना चाहिए कि थोड़े बच्चों पर इतनी मेहनत करें जितनी ज़्यादा पे करनी थी, तो आप देखिएगा अगले दिनों में दूसरे बच्चे और भी आ जाएंगे। तो ख्वाहिश उभरती है, तमन्नाएं आती है ना, तो तमन्नाएं भी मिलती है, जीतने का जज्बा भी मिलता है। लेकिन जब बंदे को कामयाबी नहीं मिलती तो अगर आप पीछे हो जाते हैं ना तो सोचें आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं है। हमारे कुरान ने इसी बात को बता दिया कि हजरत नूह 950 साल के बाद भी 70-80 लोग लेकर निकले, नाकाम थे क्या? नाकाम नहीं थे। उनको पता है कि हमारा दीन एफर्ट ओरिएंटेड है, हाउ मच एफर्ट यू आर पुटिंग, कितनी कोशिश आप डाल रहे हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। लेकिन अभी आपका टेस्ट ले ले कोई, या एक बंदा वो एक टेस्ट में 50 में से 48 नंबर लेता है, दूसरा 50 में से 30 लेता है, आप किसको कामयाब कहते हैं? 48 नंबर वाले को ना। पर 48 वाले ने हो सकता है पहले भी बहुत दफ़ा पढ़ा, उसके हालात बड़े अच्छे हैं, उसको घर जाते ही किसी ने मौका दिया पढ़ो सीखो, उसका जहन ही बड़ा अच्छा है। और जो बेचारे ने 30 लिए हैं, उसके घर में मेहमान भी हैं, उसको कई मसले हैं, उसने कभी याद नहीं किया, वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसने 100 दफ़ा लेसन पढ़ा, जो 48 लेके बैठा उसने 10 दफ़ा पढ़ा, एफर्ट किसकी ज़्यादा है? 30 वाले की। तो अल्लाह कहता है 30 वाला ज़्यादा अजर लेगा। इसलिए जो नेकी हम करते हैं ना, वो नेकी काउंट कैसे करती है, किन हालात में करते हैं। आप और मैं यहाँ अभी बैठे हुए सभी एक जगह ही है ना, टाइम भी एक जितना दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन क्या हाल हम सबको एक जितना अजर मिल रहा है? नहीं। किसी के तो मियाँ उसको छोड़ के जाते होंगे, उसका बैग भी ऊपर छोड़ जाएंगे, जी आप बेगम पढ़िए, तो कुछ के मियाँ कहेंगे नहीं जाने दूंगा आज, फिर मेरी लाश के ऊपर से गुजर के जाओगी, जो फिल्मों वाला डायलॉग होता है, कहते लेटे फिर मैंने तो जाना है, फिर ठीक हो जाते हो, कहते जाने दो, जाओ भी जाओ, मैं ठीक हूँ भी जाओ, अभी मरने का मूड नहीं है। लेकिन एफर्ट्स को काउंट करती हैं, जो जितनी आप, कोई करीब से पैदल आ गया, कोई दो बसें बदल कर आया, कोई 5 मिनट की राइड से आ गया, कोई 1 घंटे से आया, अल्लाह ताला एफर्ट्स देखता है। तो जब आप मैं काम करें ना, तो ये सोचें छोटे छोटे मंसूबे ना बनाएं। बाद लोग कहते हैं अल्लाह हमसे भी कोई छोटा सा काम ले ही ले दीन का, तो मैं कहती आप क्या कह रही हैं, आप ये कह अल्लाह मुझसे कोई बड़ा काम ले, फिर चाहे छोटा हो जाए। एक औरत थी, तो वो किसी के लिए दुआ कर रही थी अपने बच्ची बच्चे के लिए, तो अल्लाह मेरी बेटी के नसीब में, चलो बेटा नहीं है तो उसको बेटियों ही दे दे। तो मैंने कहा क्या अल्लाह के उस बेटों की कमी है, बच्चे नहीं थे ना, तो अपनी बेटी के लिए दुआ क्या करती थी कि अल्लाह मेरी बेटी को, फिर चल तू बेटियों ही दे दे। ये हार मानने वाला साहब है ना कि शायद बेटा देना ज़्यादा मुश्किल चीज़ है, तो फिर अल्लाह बेटी दे दे, कभी ऐसा ना करे। छोटे मनसूबों में वो जादू नहीं है जो बड़े प्रोजेक्ट्स में है। आप देखिए कि आपका खून जब तक नहीं खौलता ना किसी काम को करने के लिए, आप वो काम करते नहीं। जितना बड़ा प्रोजेक्ट लाएंगे ना, उतनी आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा आएगी, उतनी हरकत ज़्यादा आएगी। आज शाम तक आपने अपने घर वालों के लिए खाना बनाना है, नॉर्मली एक सालन रोटी जो आप रोज़ बनाते हैं, आप देखिएगा आप मुश्किल से वही बना पाएंगे, फिर भी मियाँ को कहेंगे सुबह से बैठी ही नहीं, दुपट्टा भी बांध लेंगे माथे पे, दिल जाएगा तो। और अगर आपको एकदम पता चले अभी 2:30 बजे हैं और रात को 20 मेहमान आ रहे हैं घर में, तो मेरा लिए आप 2-3 सालन और रोटी चावल कुछ ना कुछ तो बना ही लेंगे, टाइम वही है जो अभी भी है। ये जो एक्स्ट्रा सालन खाना बना ना, ये वो उस बड़े चैलेंज की वजह से बना है। तो छोटे मंसूबे ना बनाएं, इनमें आपके खून को खुलाने की बात ही नहीं, बड़े मंसूबे बनाएं, बड़ा काम करें और उम्मीदें रखें, बढ़ें जीतने के लिए, क्योंकि खोने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। पता नहीं आपको शायरी अच्छी लगती है कि नहीं, अच्छी तो मुझे भी बड़ी लगती है लेकिन आती नहीं। लेकिन अलामा इकबाल का एक शेर है अपने बेटे जावेद, इनका बेटा था, तो जवानों में जो एक तन आसानियाँ होती हैं तो वो उसमें देखते होते थे, तो अपने बेटे को कहते हैं कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बाहर की मौजों में इस्तराब नहीं है। मेरे लिए इससे खूबसूरत कमेंट इस टॉपिक एंड पे हम नहीं बोल सकते। बेटे को असल में बद्दुआ ही दे रहे हैं ना कि कोई तूफान आए फिर तो हाथ पांव मारे बचने के लिए, क्योंकि तू डंडा डंडा बैठा है, तेरे अंदर हरकत नहीं है। तो इट्स वेरी ट्रू, आप में जिंदगी में अपने आप को गर्म रखें। वो कहते हैं ना, झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है बहाना। दुख की बात है कि आज हम मुसलमानों का लहू ठंडा हो चुका है, इंतहा से ज़्यादा कोल्ड है। हमें तड़प ही नहीं, हमें तकलीफ ही नहीं होती। हमारे सामने लोग जानों में जाने वाले काम कर रहे हैं, हमारे सामने लोग मर जाते हैं। मैंने देखा एक जगह जाकर लोग बूढ़े साहब यानी बुजुर्ग 70-80 के से, उनकी जो बहू थी वो भी बूढ़ी थी, जिनको मैंने मिला और लोगों ने बताया कि ये घर वाली हैं, इनके ससुर की डेथ हुई है, तो वो खुद भी अच्छी उधेड़ उम्र की 60 के करीब होंगी। तो मैं हिसाब लगा कि इनके ससुर जो फौत हुए आज अल्लाह झूठना बोला तो 80 से 70 से कम तो कभी नहीं होंगे। तो ठीक है, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे गया, बच्चों के बच्चे भी हैं बड़े हैं वो, और वो जो गए हैं वो भी बड़ी बीमारी से गए। तो मैं ज़हनी तौर पर सोच रही थी कि जो गया है उसका दुख है और उसके लिए दुआ करनी है। तो मैं जहन में सोच रही थी कि घर में बुजुर्ग ही हैं तो माहौल ऐसे ही होगा जैसा नॉर्मल है, सब खुश हैं। और वाकई मैं गई तो औरतें बैठी आपस में बातें चीतें गा रही थी जैसे भी था। फिर थोड़ी देर बाद मैंने क्या देखा कि नए मेहमान आते हैं ना, जैसे हमारे कल्चर में कोई और भी मेहमान आ रहे हैं, एकदम बाहर की तरफ दरवाजे की तरफ से आवाज आती रोने की, सूखे रोने, ना आंसू का एक कतरा। जो आए वो उनकी बहू को मिले तो ये भी रोने की आवाज़ है और वो भी रो रही और आवाज़ आई, और जैसे कल्चर में नहीं हमारे के जाते गले ला के रोना रुलाना, सिर्फ वो एक्शंस और फीचर को दूर से देखे तो साफ रोने की आवाज़ें आती हैं। मैं नहीं कह रही, मतलब मैं कोई तनकीद नहीं कर रही, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताने लगी हूँ कि जब कोई दुनिया से जाता है तो हम रस्मन भी रोते हैं उसके लिए। हम कब रोए उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक कुरान ही नहीं पढ़ा? हम किन के लिए रोए जिन्होंने अभी तक हदीस नहीं पढ़ी, जिनके भी तजवीद नहीं ठीक, जो शैतान के हाथों में तरने वाले बने बैठे हैं, जो 90-80 की स्पीड पे भाग के दुनिया के फन मज़े में लेकर बैठे हैं, हम इस पर रोएं? खुद को हरकत देने का इससे ज़्यादा कोई जज्बा नहीं है। फल अल्लाह कदबाख नफ्स कला सारीम, अल्लाह अपने नबी को कहते हैं हमें तो लगता है कि आप हलाक हो जाएंगे इस गम में कि लोग ईमान क्यों नहीं लाते। यह खुद तहरीक किया था, अंदर से तड़प पैदा करें। खुलासा क्या निकला कि ख्वाहिश और खौफ दो ताकतवर तहरीकी कुव्वतें, खौफ तहरीबी है, आपके अंदर खराबी पैदा करेगा, जबकि ख्वाहिश तामीरी है, ये आपको काम करने पे माइल करती है। कामयाब लोग ये बात जानते हैं कि वो अपनी निगाहें इनाम और अच्छे नतायज पर रखते हैं और खुद को नाकामियों के खौफ से दुखी नहीं करते। और नाकाम लोग क्या कहते हैं, हाय मैं नहीं कर सकता, हाथ मलते, मैं कैसे करूं, मेरे लिए वो नहीं, ये नहीं, वो नहीं। आपको मुझे क्या करना है, अपने ऊपर नज़र रखनी है। आप अपनी ज़िंदगी लिखें, आपको प्रैक्टिकल दो चार टिप्स बस जैन पे हम हमेशा ही करते हैं। पहली बात है, खुद से पूछे क्या मैं तब्दीली से डरती हूँ। खुद तहरीकियत पैदा करने के लिए आपको तब्दीली से प्यार करना पड़ेगा। ओ वाह, चेंज आएगी ज़िंदगी में। अच्छा, जो मेरा एक पूरा सेट सिस्टम चल रहा है ये टूट जाएगा? बस अगर आपसे कोई कहता है कि आप यहाँ से मूव होकर इधर आ जाएं, मिसाल है मस्जिद के करीब आ जाएं, स्कूल के करीब आ जाएं, कुछ कहेंगे वाह कितना मज़ा आएगा, करीब है, चलो अच्छा घर अच्छा होगा, नए तरीके से सेट करेंगे। और कुछ कहेंगे नहीं, बहुत काम करना पड़ेगा, पहला सामान उठाना फिर दूसरा लेना रखना, यानी मौजूदा तहफ़ तो बिगड़ेगा। लेकिन अच्छे हालात के लिए तब्दीली लाना नागुज़ीर है। नागुज़ीर किसको कहते हैं, जिससे भाग नहीं सकते। शर्त क्या कि इंसान ये चाहे तो क्या करें, आज से अपने अंदर मुस्बत तहरीकी कुव्वत पैदा करने के लिए काम करें। मत कहें ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकती। ये भी ना कहें कि हाँ मैं कोशिश करूंगी, लेट सी आई विल ट्राई। फिर अपनी ज़िंदगी में हमेशा इस तरह बोलें कि जो काम आप कर रहे हैं पूरे यकीन से करें, तवज्जो दें, सारी तवानाइयाँ उस काम पर लगा दें। और एक बात अपने लिए लिख लें कि ये भूल जाएं अपनी डिक्शनरी से लफ्ज़ नाकामी निकाल दें, भूल जाएं नाकामी को कि कभी मैं नाकाम भी हो सकती हूँ। क्योंकि नाकामी दरअसल आपको एक दूसरे रास्ते पे ले जाती है और आप जो तब्दीली ला रहे थे वो नहीं रहती। और याद रखें, आप और मैं जो सोचते हैं वही हमें मिलता है। फिर एक अपने लिए एक टिप लिखें, 5 कामयाब लोगों के नाम लिखें अपनी लिस्ट में। जिनको आप समझते हैं कि वो सक्सेसफुल हैं, आप उनके हालात जानें, वो कैसे कामयाब हुए। फिर इसी तरह नेक्स्ट स्टेप लिखें, पांच अपनी ख्वाहिशात लिखें, मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहती हूँ, मैं क्या हासिल करना चाहती हूँ। फिर उसके फ़ायदे लिखें, 10 फ़ायदे लिखें कि जो मेरी ख्वाहिश है अगर वो पूरी हो जाए तो मुझे क्या फ़ायदे होंगे। फिर आप एक हफ्ता तक हर रोज़ इस लिस्ट को सोने से पहले पढ़ें और सुबह उठते सबसे पहले इस लिस्ट को पढ़ें, ये पांच फ़ायदे हैं जो मैं लेना चाहती हूँ, 10 इससे दुनियावी चीज़ें मिलेंगी और ये क्या है। सुबह शाम पढ़ें कि आपको याद हो जाए। फिर ऐसे बंदों से मिलिए जो ऑलरेडी वही काम कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं, और उनसे वो काम जो आपने भी किया नहीं या करना शुरू किया है या करना चाहते हैं उसकी इंफॉर्मेशन लें, सर्च करें, और जितने खदशात हैं उस पर पढ़ें, आउज़ु बिल्लाही मिन हमज़ाति शैतान। अपने मसाइल पर तवज्जो ना दें बल्कि उनके हल को ढूंढें, काम शुरू करें, तवानाइयां लगा दें, तब तक छोड़ें ना जब तक कामयाबी हासिल ना हो जाए, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो ये थी खुद तहरीकियत, तू मेरा नहीं बनता अपना तो बन, ये भी एक शेर का टुकड़ा है कि तू मेरा नहीं बना अपना तो बन। हकीकत है कि हम सारी ज़िंदगी अल्लाह के बने ना बने हम अपने भी नहीं बनते। سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.